ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पात्र रविवार 11 अप्रैल 2021 के लिए है। विषय: क्या पाप, बीमारी और मृत्यु वास्तविक हैं? स्वर्ण पथ, भजन सेनता। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। उत्तरदायी ध्यान, भजन सेनता। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें। वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिने और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिने और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायुओं से तिरपत करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। पाठ उपदेश बाइबल में से उत्पत्ति। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रींगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रींगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रींगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। भजन सेनता। वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। यूहन्ना। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया, और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करें, सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसे परखने के लिए ये बात कही थी, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुक कर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वो उससे पूछते रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो कोई निष्पाप हो, वही इसको पहले पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वो कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। रोमियो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधम के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यूहन्ना। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो उसने पाप किया था ना उसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रगट हों। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर कहा, जा शैलोह के कंद में जाके धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। मत्ती। और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, ये न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्य अधिवक्ताओं की पुस्तकों को लूप करने आया हूँ, लूप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्र या बिंदु भी बिना पूरा हुए ना टलेगा। प्रेरितों के काम। और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। प्रेरितों के काम। और प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वो सब एक चित होकर सुलेमान के औसार में इकट्ठे हुआ करते थे, और विश्वास करने वाले बथेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों में लाकर काठों और ठेलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों में से भी बहुत से लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठे होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। प्रेरितों के काम। हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की, और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे, और युतकस नाम एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसके प्राण उसी में हैं। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पोह फट गई। फिर वो चला गया और उस लड़के को जीवित ले आए, और बहुत शांति पाई। प्रेरितों के काम। जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, तो तुम्हारे यहाँ ये बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? लूका। क्योंकि जो चिन्ह परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावरित नहीं होता। अब मैं मेरी विक्की रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। जो कुछ भी बनाया गया है वो भगवान का काम है, और सब अच्छा है। अन्यथा वो कैसे हो सकता है? क्योंकि आध्यात्मिक निर्माण उसके अनंत आत्म नियंत्रण और अमर ज्ञान का प्रकोप था। सब कुछ भगवान ने अच्छा या योग्य बनाया। जो कुछ भी विधाता यह द्वेष अपूर्ण है, उसने नहीं बनाया, इसलिए ये असत्य है। उत्पन्न के विज्ञान में हमने पढ़ा कि उसने वो सब कुछ देखा जो उसने बनाया था, और देखा तो बहुत अच्छा था। शारीरिक इंद्रियां अन्यथा घोषित करती हैं, और अगर हम सत्य के रिकॉर्ड के रूप में त्रुटि के इतिहास के लिए एक ही ध्यान लगाते हैं, तो पाप और मृत्यु का पवित्र अभिलेख भावतिक इंद्रियों के झूठे निष्कर्ष का पक्षाधार है। पाप, बीमारी और मृत्यु को वास्तविकता से राहित समझना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे ईश्वर के हैं। बीमारी, पाप और मृत्यु धार्मिक होने के नाते परमेश्वर में उत्पन्न नहीं होते और ना ही उसकी सरकार के होते हैं। उनका कानून ठीक ही समझा जाता है, उन्हें नष्ट कर देता है। यीशु ने इन कठानों के परिणाम प्रस्तुत किए। क्रिश्चियन साइंस का शारीरिक उपचार अब परिणाम है। यीशु के समय के अनुसार ईश्वरीय सिद्धांत के संचालन से इससे पहले के पाप और बीमारी मानवीय चेतना में अपनी वास्तविकता खो देते और सिद्ध भाविक रूप से गायब हो जाते हैं, और अभिषेक रूप से अंधेरा प्रकाश और पाप की सुधार के लिए जगह देता है। अब अतीत की तरह ये शक्तिशाली कार्य अलौकिक नहीं है, बल्कि सर्वज प्राकृतिक हैं। वो इमैनुअल या भगवान हमारे साथ है का संकेत हैं। मानवीय चेतना में मौजूद एक दिव्य प्रभाव और खुद को दोहराते हुए अब जैसा कि वादा किया गया था आ रहा है कि बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। भगवान ने बीमारी और मौत भेजने की बजाय उन्हें नष्ट कर दिया और प्रकाश अमृता में लाया। सर्वव्यापी और अनंत मन ने सभी को बनाया और सभी को शामिल किया। ये मन गलतियां नहीं करता है और बाद में उन्हें सही नहीं करता। ईश्वर मनुष्य को पाप करने, बीमार होने या मरने के लिए प्रेरित नहीं करता है। जब भगवान सब और अनंत काल के हैं, तब ये असंभव है कि मनुष्य को वास्तविक रूप से खोना चाहिए। ये धारणा के मन पदार्थ में है और तथाकथित सुख और पीड़ा, जन्म, पाप, बीमारी और पदार्थ की मृत्यु वास्तविक हैं, एक नश्वर विश्वास है, और ये विश्वास वो सब है जो कभी खो जाएगा। मनुष्य के पूर्ण, यहाँ तक के पिता के रूप में भी पूर्ण होने का विज्ञान बताता है, क्योंकि आध्यात्मिक मनुष्य का आत्मा या मन ईश्वर है, जो सभी का दिव्य सिद्धांत है, और क्योंकि ये वास्तविक व्यक्ति आत्मा की बजाय शरीर के नियम द्वारा शासित है, ना कि पदार्थ के तथाकथित नियमों द्वारा। बुराई सर्वज्ञ नहीं है, अच्छाई असहाय नहीं है, ना तो पदार्थ के प्राथमिक और आत्मा के कानून के तथाकथित कानून है। इस पाथ के बिना हम पूर्ण पिता या मनुष्य की दिव्य सिद्धांत की दृष्टि खो देते हैं। यीशु ने कभी भी बीमारी को खतरनाक या ठीक ना होने वाली नहीं कहा, जबकि उनके छात्र उनके पास एक ऐसा मामला लेकर आए जिसे वो ठीक करने में असफल रहे थे, तो उसने उनसे कहा, हे विश्वासहीन पीढ़ी, ये कहते हुए कि ठीक करने की उपेक्षा शक्ति मन में होती है, उसने कोई दावा निर्धारित नहीं किया, भावतिक कानूनों के लिए कोई आज्ञाकारिता का आग्रह नहीं किया, लेकिन उनके लिए प्रत्यक्ष अवज्ञा का कार्य किया। यीशु ने विज्ञान में सिद्ध पुरुष को सही ठहराया, जो उसे दिखाई दिया जहाँ पाप करने वाला नश्वर मनुष्य नश्वर प्रतीत होता है। इस सिद्ध पुरुष में उद्धारकर्ता ने, परमेश्वर ने अपनी समानता को देखा और मनुष्य के इस सही दृष्टिकोण ने बीमारों को उपचार दिया। ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम ने पाप, बीमारी और मृत्यु पर यीशु को अधिकार दिया। उनका मिशन आकाशीय विज्ञान को प्रकट करना था, ये साबित करने के लिए कि ईश्वर क्या है, वो मनुष्य के लिए क्या करता है। हमारे गुरु ने कोई विचार, सिद्धांत या विश्वास नहीं सिखाया, ये सभी वास्तविक लोगों का दिव्य सिद्धांत था जो उसने सिखाया और अभ्यास किया। अपने आप को पाप से श्रेष्ठ बनाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इससे श्रेष्ठ बनाया है और मनुष्य को नियंत्रित करता है, सच्चा ज्ञान है। पाप से डरने के लिए प्रेम की शक्ति और ईश्वर के मनुष्य से संबंध में होने के दिव्य विज्ञान को गलत समझना है। अपनी सरकार पर संदेह करना और उसकी सर्वशक्तिमान देखभाल पर विश्वास करना, अपने आप को बीमारी और मृत्यु से बेहतर पकड़ना भी उतना ही बुद्धिमानी है और ईश्वरीय विज्ञान के अनुसार है। उससे डरना असंभव है जब आप भगवान को पूरी तरह से समझ लेते हैं और जानते हैं कि वो उनकी रचना का हिस्सा नहीं है। हमारे मालिक ने शैतानों, बुराइयों को बाहर निकाल दिया और बीमारों को ठीक किया। उनके अनुयायियों के बारे में ये भी कहा जाना चाहिए कि वो भय और सभी बुराइयों को अपने और दूसरों से दूर करते हैं और बीमारों को ठीक करते हैं। जब भी मनुष्य ईश्वर द्वारा शासित होगा, ईश्वर मनुष्य द्वारा बीमारों को ठीक करेगा। सत्य ने त्रुटि को अब बाहर कर दिया, जैसा कि 19 सदियों पहले हुआ था। यदि बीमारी सच है या सत्य का विचार है, तो आप बीमारी को नष्ट नहीं कर सकते और इसकी कोशिश करना भी बेतुका होगा। तब बीमारी और त्रुटि को वर्गीकृत करें, जैसा कि हमारे मालिक ने किया था जब उसने बीमारों के लिए ये कहा था, जिसे शैतान ने बाधे किया। और मानव विश्वास पर कार्य करने वाली सत्य की जीवन शक्ति में त्रुटि के लिए संप्रभु भोग मार्ग पाते हैं, एक ऐसी शक्ति जो जेल के दरवाजों को इस तरह से खोलती है और बंदी को शारीरिक और नैतिक रूप से मुक्त करती है। जब बीमारी या पाप का भ्रम आपको लुभाता है, ईश्वर और उसके विचार के प्रति दृढ़ रहना, अपने विचारों में पालन करने के लिए उसकी समानता के अलावा कुछ भी अनुमति ना दें। रोग के उद्दीपित या उन्नत चरणों में अंधे और शांत प्रस्तुत करने के बजाय उनके खिलाफ विरोध में खड़े हों। विचार पर बढ़ने के लिए पाप या बीमारी का कोई दावा नहीं है। इसे एक विश्वास के साथ खारिज कर दें कि ये नाजायज है, क्योंकि आप जानते हैं कि ईश्वर पाप से अधिक बीमारी का लेखक नहीं है। आपके पास पाप या बीमारी की आवश्यकता का समर्थन करने के लिए उसका कोई कानून नहीं है, लेकिन आपके पास उस आवश्यकता को नकारने और बीमार को ठीक करने के लिए दिव्य अधिकार है। मन शारीरिक इंद्रियों का स्वामी है और बीमारी, पाप और मृत्यु को जीत सकता है। इस ईश्वर पदार्थ अधिकार का प्रायोग करें, अपने शरीर पर अधिकार करें और उसकी भावनाओं और कार्य को नियंत्रित करें। आत्मा के समर्थ में विरोधी का विरोध करना अच्छा है। ईश्वर ने मनुष्य को इसके लिए साक्षम बनाया है और कुछ भी मनुष्य में दिव्य रूप से दी गई क्षमता और शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता है। अब मैं मीरबेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम, ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य प्रतिस्तर्किता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।